नारायण 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 नारायण। यज्ञो दानं तपश्चर्या पावनानि मनीषां। यज्ञ दान अने तप ए बुद्धि ने पवित्र करे छे। पवित्र बुद्धि में ज परमात्मा नो आनंद उभराय छे। पवित्र बुद्धि में ज सुख दुखना प्रसंगों में समता टके छे। पवित्र बुद्धि में ज हर्षना समय हर्षना कादव में लपसातु नथी अने शोकना समय शोकनी खीण में पड़ातु नथी। सत्संग जीवन में थी बाद थई जाए, जिंदगी में से सत्संग निकाल दिया जाए तो मानवी जिंदगी पशु से भी बेकार हो जाती है। पशु तो अपने कर्म का फल भोगकर मानवता के तरफ जा रहा है, लेकिन मनुष्य अगर सत्संग नहीं है तो जो आँखों को अच्छा लगा, जीभ को अच्छा लगा, कान को अच्छा लगा, वही विकार भोगते भोगते मनुष्यता के महत्व का फायदा छोड़कर पशुता की नीचाई में चला जाएगा। और हो सकता है कि पशु भी न बन पाए, जड़ योनियों में चला जाए, पेड़ पौधे वृक्ष आदि में। गाय कभी झूठ नहीं बोलती और दीवाल कभी गाली नहीं देती। पेड़ किसी के घर चोरी करने नहीं जाता और लताएं अपने पतियों को तलाक नहीं देती। लेकिन मनुष्य तलाक भी देता है, चोरी भी करता है, झूठ भी जो बोलता है और न जाने क्या क्या करता है। फिर भी इन सभी से मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य को एक सीख सत्संग की मिले तो विलासी विश्वामित्र भगवान राम के गुरु होकर पूजे जा सकते हैं और रत्ना वाल्मीकि ऋषि होकर पूजे जा सकते हैं। शबरी भीलन राम जी को अपने झूठे बैर भी खिला सकती है प्रेम बल से। मनुष्य में संभावनाएं भी है और सत्संग से विकसित होती। भगवान ने युद्ध के मैदान में भी अपने प्रिय अर्जुन को सत्संग से संपन्न किया, तब अर्जुन ठीक से कर्तव्य निभाने में सक्षम हुआ। धर्म आपका कर्तव्य नहीं छुड़ाता, धर्म आपकी बेवकूफी छुड़ाता है। धर्म आपके अंदर कर्तव्य का जो अभिमान है अथवा कर्तव्य की जो चोटें हैं या जो सुख दुख का आकर्षण है वो छुड़ाता है। कर्म आसक्ति छुड़ाता है, फल आसक्ति छुड़ाता है, न करने की आसक्ति छुड़ाता है, करने की आसक्ति छुड़ाता है। ये आसक्ति जीव को दुखदायी परिस्थितियों में धकेल दे जाती है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में सम रहने वाला धीर पुरुष अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अपने अमर अकाल पुरुष का ज्ञान, अकाल पुरुष का आनंद और शांति पाने में समर्थ हो जाता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में जो सम रहने की योग्यता निखार लेता है वो अमृत स्वरूप अकाल पुरुष के आनंद को परमात्मा को पाता है। जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहीं ते जान। हमें जरा सा भूख लगती है तो मर गए मर गए मर गए, जरा सा प्यास लगती है तो छटपटा दे। हमसे तो ज्यादा दयनीय स्थिति अमेरिका वालों की, जरा सा गर्मी हुई न हुई एसी चालू, जरा सा सर्दी हुई न हुई हीटर चालू, जरा सा थोड़ा कुछ हुआ तो सुविधा सुविधा सुविधा। इतना खोखला जीवन के भारत में आते तो उनको पानी नहीं बचता है। अमेरिका का ड्राइवर हिंदुस्तान में ड्राइविंग नहीं कर सकता, लेकिन हिंदुस्तान का बंदा दुनिया के सभी शहरों में ड्राइविंग कर सकता है। हिंदुस्तान के ड्राइवर को दुनिया के किसी भी देश में ड्राइविंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। 1939 में मित्र राष्ट्रों की सेना अफ्रीका के रणभूमि में उलझ गई थी। अन्न, जल और शारीरिक सुविधाओं की सहायताओं से उनका संबंध टूट गया था। बस रण ही रण, रण ही रण, रण ही रण, पत्थर, कंकड़ और बालू। एक घंटा, दो घंटा नहीं, पांच, 25 घंटा नहीं, 50 और 60 घंटे नहीं, सतत 72 घंटे वे अन्न, जल और औषधि से विलग हो गए थे। 700 सैनिकों में से 210 बच पाए, बाकी कोई 2 घंटे में मरा, कोई 5 में, कोई 15 घंटे में, तो कोई 40 घंटे में। और 210 जो बचे उसमें 80% हिंदुस्तानी लोग ही बच पाए, बाकी के लोग स्वाहा होते गए। जांच पड़ताल की गई कि हिंदुस्तानी लोगों के यहाँ व्रत उपवास आदि है। इन सैनिकों ने व्रत उपवास करके कठिनाइयों के सिर पर पैर रखने का अभ्यास किया होगा, नहीं तो इनके माँ बाप ने तो जरूर किया होगा। दादा दादी और नाना नानी के उपवास के ही बीज इन सैनिकों को भूख और प्यास से बचाने में सक्षम हुए। महावीर ने 12 साल में 365 बार भोजन किया था, कभी 15 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 2 दिन में, तो कभी 1 दिन में, तो कभी 18 दिन में, और बड़े स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे। 1925 में रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती संस्था में एक विद्यार्थी भर्ती हो गया। थोड़े दिनों में दूसरे विद्यार्थी उसको शक की नज़र से देखने लगे और उसके पीछे एक दो आदमी लगा दिया गया। उस विश्व भारती के विद्यार्थी को पता चला और उसने विश्व भारती संस्था छोड़ने का निर्णय किया और बड़ा अशांत होकर, दुखी होकर गांधी जी की शरण आया कि मेरे पर जासूस होने का आरोप है और मेरे पीछे लोग जासूसी करते हैं और मैं ऐसा नहीं हूं। गांधी जी ने तनिक शांत होकर उसकी बात सुनी और उसके चेहरे और हाव भाव से लगा कि आदमी भला है। बोले, अच्छा कि मैं विश्व भारती वालों को कह दूं ये जासूस नहीं है, तुम पर विश्वास रखूं तो मेरा विश्वास सत्य रहेगा। बोले, हाँ, लेकिन मुझे वहां नहीं रहना, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। गांधी ने कहा, मेरे आश्रम में विश्व भारती आश्रम से ज़्यादा कड़क नियम है। मैं मरने के बाद किसी को कुछ मिले ये नहीं, जीते जी उपवासों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, सजगता के द्वारा, सेवा के द्वारा निखार लाना चाहता हूँ। जीवानी जमा खर्च नहीं, मंदिर ना देव आ आपी देशे, मस्जिद ना फलाना आ आपी देशे, चर्च ना फलाना आ आपी देशे, ए जे भटक हुए तो तू त्या जा, पण अहीं अंतरात्मा देव अत्यारे आ घड़िए तने प्रकाश आपे, एवं जो तने जोईतुं होय तो अहीं कड़क जीवन छे, यहां कड़क नियम है, कड़क जीवन है, कड़क अनुशासन है। बोल, जीवानी जमा खर्च करना है तो उधर ही जाओ, लेकिन हकीकी जीवन जीना है तो मेरे पास है। अपने शास्त्र कहते हैं जो जगे हुए महापुरुष हैं ज्ञानवान, उनके लिए शास्त्र कहते हैं निज जन कठोरा, अपने वालों के लिए वो कठोर होकर उनकी एक भी गलती, उनसे अपने शिष्यों की गलती गुरु से सही नहीं जाती। समर्थ रामदास हो चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, रामकृष्ण समाधि से उठे और सेवक झाड़ू लगा के गया, जरा तिनखा पड़ा और बुरी तरह डांटा के मूर्ख, तो कार्य में तत्पर नहीं, कार्य में कुशल नहीं, लापरवाह है तो परमात्मा में तेरा मन लापरवाही से ही तो इधर उधर भटकेगा। एक शाम को रामकृष्ण समाधि से उतरे हैं और सेवक ले आया है बैंगन, क्या भाव? बोले, दुआने शेर। अरे, तो कल के बासी बैंगन है और 6 पैसे शेर की वस्तु दुआने में कैसे लाया? वो महापुरुष जिसको 1000 अशर्फियाँ कोई देता है, बोले, गंगा जी में डाल दो, मेरे को जरूरत नहीं। लेकिन चेला दुआने की सब्जी लाया है, 6 पैसे की, 1.5 आने की चीज़ दुआने में लाया है, तो चेले को बुरी तरह डांटा, क्योंकि उसकी लापरवाही उसको आगे जलकर खता में डाल देगी। तो गांधी जी ने कहा कि विश्व भारती से भी यहाँ कड़क नियम है। बोले मैं सारे नियम पालूंगा, लेकिन आप जैसे पुरुष की सानिध्यता मेरे जीवन में चार चांद लाएगी। वो चीनी विद्यार्थी की प्रार्थना मानकर गांधी जी ने उसको आश्रम में रखा। वो अपनी दिनचर्या करता था। एक दिन गांधी जी को चिट्ठी लिख के दे दी कि आपके पास समय कम है, फिर भी मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं वो मैंने मुख्य मुख्य लिखी है, मेरे में ये दोष थे, और अब उन दोषों को दूर करने के लिए उपवास सर्वदोष विनाशक है, अर्ध रोग हरि निद्रा सर्वदोष हरि क्षुधा। ठीक से नींद आए तो आधे रोग शमन हो जाते हैं, लेकिन मन के और तन के सभी रोग उपवास से दूर होते हैं। तो मैं 10 दिन का उपवास करूंगा। जे जाड़ी मासी हो छेन ए समझी जाए, भले डॉक्टर हो इन सर्जन हो, पण समझी जाए। यहाँ सांभळो छो सर्जन, उपवास जाड़ी मासी ने खास उपवास, पण उपवास ना दिवसों में खास करीने जुदा रहेवू जोईए, पथारी जुदी ज होवी जोईए, नहीं तो पति नु आयुष्य नाश थाय। चीनी विद्यार्थी ने बोला मैं 10 दिन उपवास करना चाहता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। गांधी ने कहा जब मुझे समय मिलेगा मैं तेरी चिट्ठी पढ़ूंगा, बाद में मैं सम्मति दूँ तब तू उपवास करना। गांधी जी को जब समय मिला और उसको बुलाया, अच्छा तुम्हारी सच्चाई के कारण मैं तुम्हें उपवास देने के लिए पहले तैयार रहना पड़ता है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन अन्न की ज़्यादा याद आती है, कुंवारे को शादी ज़्यादा याद आती है, शादी वाले को बच्चा याद आता है, जिनको बच्चा है और शादी है उनको फिर दूसरे के बच्चे याद आते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तू तो आवोच है। और जो तुझे अच्छा लगता है उसका बाप उसको बोलता कि तू ऐसा है, फलाना ऐसा है। मनुष्य का मन है जो वर्तमान में है उसका तिरस्कार, और जो नहीं है उसके लिए ललक लगती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। 32 दांत उसमें से एक चला गया तो 31 की कोई कीमत नहीं। जो 32वां नहीं है ना, जीभ बार बार वहीं जाती। घर में 3 कमरे हैं तो एसी की कमी खुटती है, और एसी है तो फिर दूसरी की कमी खुटती है, लेकिन जिनके पास 2 कमरे उनको तीसरे कमरे की कमी खुटती है। जिस बस कमी खोजना ये मन का स्वभाव है। मेरे पास आते लोग आशीर्वाद मांगते कि बापूजी मेरे बेटे की शादी हो गई है, ये वरकन्या को आशीर्वाद दो, और हनीमून करने को जाते हैं। कहाँ जाएंगे? बोले कश्मीर। दूसरा है, तीसरा है कश्मीर। मैं क्या कश्मीर, तेरे पास इतना सुख है कि सब भागते शादी करके तेरे पास सुख की भीख मांगने? मैं चुपके से कश्मीर गया, किसी को बताया नहीं। एक इंजीनियर को कहा एयरपोर्ट एयरलाइन वाले को कि हम हरिद्वार जाते समय पहले कश्मीर चक्कर मारना चाहते, किसी को पता नहीं चले। हम भी देखो कैसे अटकल करते हैं। और फिर हम माँ तो दूध पर रहे, फल पर रहे। 1.5 दिन बराबर वहाँ का ऑडिट कर लिया, 7 स्प्रिंग, डल लेक, फूलों की घाटी है वो सब देख। फिर वहाँ की नाव में बैठ के देखा तो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया बोट हाउस में, नाव में जो छोटे छोटे घर हैं उनके। तो वो देखा तो कमरा है, दूसरा लिविंग रूम है, फैमिली रूम है, फलाना है, 5000 किराए वाला है, 2000 वाला है, 200 वाला है। ये अटैच रूमों का, अटैच लेटरिन बाथरूमों का मसाला कहाँ जाता होगा, पानी कहाँ से आता है? तो मेरे को ले गए बाबा जी ऊपर है, नौकर आएगा और हैंडपम्प चला देगा, टंकी भर जाएगी। तो हैंडपम्प पानी तो डल लेक से आता है, मैं समझ गया। सोचा कि हाय भगवान, फैमिली रूम, अटैच लेटरिन बाथरूम का मसाला कहीं पहाड़ पे तो नहीं जाता होगा। एक तरफ मसाला जा रहा है, दूसरे तरफ हैंड पंप पानी भर रहा है, और लेने जा रहे हैं सुख। मैं तो उन बोट हाउसों में नहीं रहा, अलग से रहा था, तालाब में नहीं रहा था, अलग से किसी जगह पे रहा। फिर वो शिकार नाव सजी धजी, उसमें बैठा, शायद इसमें सुख छुपा हो सबका, उसमें भी सैर करके देख लो।
बाबा ऐसे नहीं बना जाता, सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता सी भाई।
वो शिकारों में बैठा तो नाव वाला जो जुआन था बोले, बाबा जी ओ हमारे भाग में लिखा है हम कभी बंबई जाएंगे, मेरी किस्मत है बंबई जाने की। मैं कहा बंबई वाले इधर झक मार रहे हैं सुख लेने के लिए, और ये रो रहा है कि मैं बंबई कब जाऊंगा। हाय रे मन, तू कैसा धोखा देता है। हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं परमेश्वर पूर्ण भरपूर है। आजरा हजूर जागंदी ज्योत, आद सत जुगात सत, है भी सत हो से भी सत। ओ घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। मन बोलता है एक करूं तो सुखी हो जाऊं, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, उधर पाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो भगवान कहते हैं सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवया कल्पते है। ना विरतो दुश्चरितान शांतो ना समाहिता। जो दुश्चरित्रों से विरत नहीं हुआ, जो शांत होना नहीं सीखा, जो समाहित होना नहीं सीखा, उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जो पाप कर्मों से बचने की कोशिश नहीं करता, जो इंद्रियों की चंचलता को रोकने का प्रयास नहीं करता है, जो चंचलता अशांति का कारण है, विफलताओं का कारण है, नारकों में भटकाने का कारण है, उनको जो नहीं रोकता, और जिसका मन शांत नहीं, सत्पुरुषों का सानिध्य नहीं लेता और प्रज्ञा में प्रभु का ज्ञान नहीं भरता, वो मनुष्य रूप में मृग है, पशु है। अब मैं आपकी तपस्या से तो प्रसन्न हूँ, लेकिन घंटों से आप बैठे हैं, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, फिर भी मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्यों विद्यार्थी, चीनी विद्यार्थी 10-10 दिन तक उपवास करता है, केवल पानी ही पीता है, चाय कॉफ़ी की तो बात क्या, एक सेव फल भी नहीं खाता, और इतना पाप दोषों से और बुरी आदतों से विनिर्मुक्त हुआ दोषों से। गांधी जी प्रसन्न हुए, और जब वो विदाय हुआ तो गांधी जी ने उसे शुभकामनाएं दी, और चीन में बड़ा जाना माना अखबार का वो मुख्य संपादक हुआ। आप लोग मुख्य संपादक हो ऐसी मैं नहीं भावना करता हूं, आप लोग कहीं भी हो, लेकिन व्रत उपवास के द्वारा तुम्हारा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि में हौसला बुलंद रहे। ये छोटे आदमी की पहचान है कि जरा सी उपलब्धि हो और हर्षित हो जाए, ये छोटे आदमी की पहचान है कि जरा सा घाटा हो और दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। जैसा अमृत तैसा बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने को जो चार कदम चल के आते, एक एक कदम यज्ञ का फल देता है। श्रद्धा से बैठते भक्ति योग होता है, सुनते ज्ञान योग का फल होता है, और जब नाम स्मरण करके आनंदित होते तो महाराज जप यज्ञ का फल फलित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम शांति, ओम शांति। होठ बंद, जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं, बीच में तालू में लगे। एक मिनट रोज करो, फिर जप करो, बरकत होगी। गुरु को, भगवान को अथवा स्वस्तिक को एक टक देखो एक मिनट, फिर गुरु का भगवान का मानसिक पूजन करो, फिर ध्यान करो, बड़ी बरकत आएगी। जो जपते हैं, जप तो करते हैं, लेकिन भगवान और गुरु की पूजा मानसिक नहीं करते, आराधना उनके जप में उतना आनंद नहीं आता जितना गुरु पूजन मानसिक भगवान का, गुरु का पूजन करने से जप ध्यान में बरकत आती है। एक मिनट के लिए आँख की पलकें न गिरे टिकटिकी लगाकर गुरु को भगवान को देख के, फिर ध्यान करो बरकत आएगी, जप करो बरकत आए। पीड़ोद भवति सिद्धया, जो धर्म के लिए ईश्वर के लिए पीड़ा या कष्ट सहता है वो एक प्रकार की सिद्धि पाता है।